नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 5 में स्थित 32 करोड़ 28 लाख रुपए मूल्य की एक संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली पुलिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 जनवरी तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और उत्तर रेलवे ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज और अयोध्या से 17 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 5 में स्थित 32 करोड़ 28 लाख रुपए मूल्य की एक संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड से कथित रूप से हस्तांतरित किए गए सरकारी अनुदान से खरीदी गई थी। ईडी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि इस संपत्ति को खरीदने में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वीकृत पायलट प्रोजेक्ट के लिए जारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आपदा की हर चुनौती और संकट के क्षणों में देश के अटूट विश्वास का स्तंभ बनी एनडीआरएफ की भूमिका अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित भारत का निर्माण किया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित भारत के निर्माण में एनडीआरएफ जवानों का समर्पण और तत्परता प्रेरणादायक है। उन्होंने उन अमर बलिदानों को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मानवता की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कई मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी एनडीआरएफ के कर्मियों को शुभकामनाएं दी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। डॉ लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के सभी 37 सेट प्राप्त हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया आज शाम पूरी हो गई।
नामांकन प्रक्रिया पार्टी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में शुरू हुई। ये प्रक्रिया 2 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रही। इसके बाद पत्रों की जांच हुई और नाम वापस लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने समूह द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह का स्थान लिया था। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
निर्वाचन आयोग बुधवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 3 दिन का ये सम्मेलन लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें विश्व के 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में स्थित विदेशी मिशन तथा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविद और कार्यरत विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली, गुजरात और पंजाब में चलाए गए संयुक्त अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि यह आरोपी 13,000 करोड़ रुपए मूल्य की मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य था। पुलिस के अनुसार वह थाईलैंड से मादक पदार्थ की गिरोह को सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने बताया कि अब तक इस मामले में 15 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज से 26 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत की जाने वाली प्रस्तुतियों में विरासत, सद्भाव और मातृभूमि का जश्न मनाया जा रहा है। इस 8 दिन तक चलने वाली प्रस्तुति में देशभक्ति बैंड की लाइव प्रस्तुतियां होंगी। इस दौरान प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शहर भर में 10 से अधिक स्थानों पर ये प्रस्तुतियां की जाएंगी। इनमें INA मार्केट, साकेत, रोहिणी, चाणक्यपुरी, चांदनी चौक और अन्य स्थान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आय और रोजगार सृजन में अनुकरणीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन अतिथियों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है। विशेष अतिथियों में विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप के विजेता, पीएम स्माइल योजना के अंतर्गत पुनर्वासित ट्रांसजेंडर और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान शामिल हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। NCC कैडेटों को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि NCC ने अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय गौरव के मूल्यों के साथ युवा मन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कैडेट आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि NCC द्वारा दिए गए मूल्य जीवन भर बने रहते हैं और ऐसे जिम्मेदार नेताओं का निर्माण करते हैं जो स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सत्य निष्ठा बनाए रख सकते हैं। नौसेना प्रमुख ने कैडेटों को विकसित भारत का निर्माता बताया और उनमें विनम्र, साहसी, जिज्ञासु और राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया। एडमिरल त्रिपाठी ने कैडेटों को उनकी जुनून, प्रतिभा, अनुशासन और उत्साह को प्रदर्शित करने वाली शानदार प्रस्तुति के लिए भी बधाई दी जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है।
When I look at the young, smiling and bright faces,
यहाँ मौजूद युवाओं के मुस्कुराते और उज्जवल चेहरों में मुझे जीवंत भारत का भविष्य दिखाई देता है। मैं RDC 2026 की सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ। गार्ड्स की ड्रिल और मूवमेंट, बैंड की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति और 3 राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
परफॉर्मेंस बाय द बैंड।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर रेलवे ने मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज और अयोध्या से तीर्थयात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 17 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं। प्रयाग क्षेत्र में 32 नियमित रेलगाड़ियों के साथ 13 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें लगभग 87,000 लोगों का आवागमन दर्ज किया गया। वहीं अयोध्या में 36 नियमित रेलगाड़ी के साथ साथ 4 स्पेशल रेलगाड़ी से लगभग 24,000 यात्रियों ने यात्रा की। मेरा युवा भारत पहल के तहत आयोजित कश्मीरी युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 6 जिलों से आए 170 युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ये कार्यक्रम युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को विधायी प्रक्रिया, प्रश्नकाल, बहस और लोकतांत्रिक शासन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका की भी जानकारी दी गई। उन्हें विधानसभा भवन के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल ने विट्ठल भाई पटेल जैसे नेताओं के संसदीय योगदान के बारे में जाना और अधिकारियों के साथ संवाद कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझा। कई युवाओं के लिए ये राष्ट्रीय राजधानी की पहली यात्रा थी, जिसे उन्होंने प्रेरणादायक और यादगार अनुभव बताया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज LG कप 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया। इसके अंतर्गत तीरंदाजी, फुटबॉल और शूटिंग में भाग लेने वाले 50 से अधिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा किया गया था और इसका समापन आज नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। श्री मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री के खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाती है।
एलजी कप जिसमें फुटबॉल, शूटिंग और आर्चरी दिल्ली में इसके कॉम्पिटिशन्स कराए गए एलजी साहब के इनिशिएटिव पर, वो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसको आगे बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स को दिल्ली के अंदर प्रमोट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों इवेंट्स का आज फाइनल थे, वो सब कम्प्लीट हुए हैं, जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड है उनको फर्दर भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके।
इस बीच डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार ने बताया कि डीडीए द्वारा हर साल खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन आयोजित किए जाते हैं। वहीं निशानेबाजी के नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स आज से दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो गए हैं। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और माननीय कौशिक पहले दिन ग्रुप ए के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष पर रहे। 25 तारीख तक चलने वाले इन ट्रायल्स में देश के शीर्ष राइफल और पिस्टल निशानेबाज शामिल होंगे, जिनमें विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता अनीश भानवाला, पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, उनके साथी स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। स्थायी समिति ने सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया। सहकारिता चुनाव प्राधिकरण ने आज रेल कर्मचारियों की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि बैठक का उद्देश्य संगठन के उपनियमों को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप बनाना है। मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि सभाओं के गठन और प्रतिनिधियों के चुनाव तथा समिति के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से कम 6 महीने पहले चुनाव कराने के प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने पर भी चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई यात्री किरायों में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि हवाई किराये में होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वे हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एयरलाइंस द्वारा हवाई यात्री किरायों में की गई अत्यधिक वृद्धि को शोषण करार दिया। पीठ ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा। हवाई किरायों और अन्य शुल्कों में भी होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियामक दिशा निर्देशों की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अपर सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी तय की है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश की विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स ने 2024-25 में 2700 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दर्ज किया है। आईआईटी दिल्ली परिसर में विद्युत और विनियमन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में विद्युत अधिनियम में संशोधन लाएगी, जिससे इस क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम किया जा सकेगा। विद्युत और विनियमन उत्कृष्टता केंद्र का उल्लेख करते हुए विद्युत मंत्री ने कहा कि इससे विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक सुधार शुरू होंगे, जिनसे देश को लाभ होगा। राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वहीं दिन के समय धूप खिली रही। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति के साथ कर्मचारी नामांकन योजना सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना विषय पर चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से कर्मचारी नामांकन सामाजिक सुरक्षा लाभ, भविष्य निधि अंशदान और कर्मचारी नामांकन योजना से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 5 में स्थित 32 करोड़ 28 लाख रुपए मूल्य की एक संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली पुलिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 26 जनवरी तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और उत्तर रेलवे ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज और अयोध्या से 17 मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाईं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।